नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट का किसानों के हित में फैसला, धान समेत 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। श्री मोदी कल पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, रोड शो में भी शामिल होंगे। पटना में कोरोना के 6 और संक्रमित मिले, संक्रमितों में एम्स की महिला डॉक्टर और 2 नर्सें भी शामिल। और राज्य के विभिन्न भागों में प्री मानसून बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आज भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज और जमुई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों की MSP में लागत पर 50% की वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इससे किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा।
CACP की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में MSP अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हरेक क्रॉप के लिए कॉस्ट प्लस 50% इस चीज का ध्यान रखा गया है।
श्री वैष्णव ने बताया कि धान के समर्थन मूल्य में 69 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, रागी के लिए 596 रूपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 589 रूपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 579 रूपए प्रति क्विंटल MSP की सिफारिश की गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को ऋण के संशोधित ब्याज छूट योजना MISS के तहत छूट जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। संशोधित ब्याज छूट योजना का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
4% पर 2,00,000 रूपए तक का किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबमेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब 4% पे किसानों को 2,00,000 रूपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन के दौरे पर बिहार आ रहे हैं। श्री मोदी कल शाम लगभग 4:45 बजे पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इस पर लगभग 1,200 करोड़ रूपए की लागत आई है। नए टर्मिनल भवन के शुरू हो जाने से हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री संचालन क्षमता बढ़कर 1 करोड़ हो जाएगी। प्रधानमंत्री बेटा हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। बेटा हवाई अड्डे का उद्देश्य पटना और इसके आसपास तेजी से शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहे क्षेत्रों को सेवा प्रदान करना है। इन क्षेत्रों में IIT पटना और प्रस्तावित NIT पटना परिसर शामिल है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि उद्घाटन समारोह के बाद श्री मोदी पटना में रोड शो करेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कल शाम में 5:30 बजे एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन पहले से निर्धारित था, अब वो 1 घंटा पहले पहुंच रहे हैं और कल का सभी कार्यक्रम अब 1 घंटा पहले होगा, यानी प्री पाउंड हो गया है। और इस तरह करके BJP कार्यालय में भी अब वो 5:30 बजे के आसपास ही आ जाएंगे।
प्रधानमंत्री श्री मोदी अगले दिन 30 मई को रोहतास जिले के विक्रमगंज में 48,520 करोड़ रूपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री विक्रमगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास को लेकर गंभीर रहे हैं। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान बिहार के लिए कई विकास योजनाओं की घोषणा करेंगे, जिससे राज्य विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बिहार को कुछ सौगात देते हैं और वो सौगात विकास योजनाओं के रूप में होती है। इस बार भी वो कल आने वाले हैं और कई योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं जिससे बिहार का विकास होगा। और जिस प्रकार अभी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास में मदद करने को तत्पर है, लगातार चाहे सिंचाई की योजना हो, पर्यटन की योजना हो, एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम हो, जितने मुस्तैदी से वो मदद कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से बिहार और तेज गति से विकास करेगा।
और अभी अभी अपने बिहार दौरे को लेकर प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार और पटना के लिए कल का दिन ऐतिहासिक होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पटना को एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल मिलेगा जिसका बिहार के लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। औरंगाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि विक्रमगंज में प्रधानमंत्री की सभा ऐतिहासिक होगी। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया है। इसके तहत पटना और रोहतास में समारोह स्थल और रोड शो के मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित जोन घोषित किया गया है। जगह जगह मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर होटलों, अतिथि गृह, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी है। इधर पटना में प्रधानमंत्री के रोड शो को देखते हुए यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। यातायात पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने बताया है कि 29 मई को शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक बेली रोड पर सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान वाहनों का परिचालन डायवर्ट किया जाएगा। पटना हवाई अड्डे से उड़ान पकड़ने वाले यात्रियों को 3 घंटा पहले हवाई अड्डा पहुंचने की सलाह भी दी गई है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा की अगुवाई में संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गया। यह भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है। श्री झा ने कहा कि भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति कायम है।
सारी पार्टी एक साथ खड़ी है इस लड़ाई में। देश में भी लोग मान लिया है कि एनएफ इज एनएफ हो गया। अब अगर इस तरह का घटना होगा तो हम केवल नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, वी विल गो डीप इनसाइड एंड विल हिट यू और हिट यू लाइक एनीथिंग। ये एक रिजॉल्व लेकर के गए हैं, दुनिया में भी हम लोग जाकर के यही बता रहे हैं।
इधर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सभी दलों का संसदीय शिष्टमंडल रोम पहुंच गया है। यह शिष्टमंडल ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत और एकजुट संदेश पहुंचाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। पटना में कोविड के 6 और संक्रमित मिले हैं। इनमें एम्स की एक महिला डॉक्टर और 2 नर्सें शामिल हैं। इन सभी में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षणों की जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक 9 संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है। इनमें एनएमसीएच की 2 नर्सें भी शामिल हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि नया वेरिएंट घातक नहीं है। श्री पांडे ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क और सचेत रहना आवश्यक है। पटना में कोरोना संक्रमितों के मिलने से प्रशासन ने प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उनके आसपास रहने वाले सुरक्षा कर्मियों और उनसे मिलने वाले लोगों के लिए कोरोना जांच आवश्यक कर दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण का अधिकांश मामला जून महीने के अंत तक निपटा दिया जाएगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान भी शीघ्र कर दिया जाएगा।
जहाँ तक स्थानांतरण का सवाल है, हमने पहले भी कहा था कि 2.5 लाख बीपीएससी के अध्यक्ष क्षमता पास है, संख्या बहुत बड़ी है। फिर हमने कहा था कि हर हालत में जून के अंत तक सभी निराकरण हो जाए।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिव्यांग छात्र छात्राओं की बेहतर शिक्षा के लिए सभी संस्थानों में विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति की प्रक्रिया अगले महीने शुरू होगी।
स्पेशल टीचर्स का जो दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाए उसकी संख्या ऐसे टीचरों की 7,000 से ज्यादा है और अनुकंपा पर भी 6,421 जो है दावेदार है उनको सीधे नियुक्ति होगी जो अनुकंपा आधारित नियुक्ति है। वैकेंसी निकलेगी स्पेशल टीचर्स की जो दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे और वैसे हम लोगों ने 7,000 से ज्यादा।
मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न भागों में अगले कुछ दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज और जमुई में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इधर मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून सीजन में देश भर में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून से सितंबर के बीच होने वाली वर्षा औसत से अधिक रहने की संभावना है। राज्य सरकार ने खगड़िया जिले के मानसी अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी प्रभात कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेजने का निर्णय लिया है। प्रभात कुमार पर पूर्वी चंपारण, लखीसराय और खगड़िया जिले में पदस्थापना के दौरान कार्य निर्वहन में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता और कनिष्ठ कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप जांच में सही पाया गया है। जदयू नेता और सकरा से पूर्व विधायक सुरेश चंचल तथा जदयू के राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य परवेज मोहम्मद सिद्दीकी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इन दोनों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोर्ट परिसर से आज 5 कुख्यात कैदी पुलिस हिरासत से फरार हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार पांडे ने बताया कि कोर्ट परिसर के हाजत में कैदियों के बंद करने के दौरान ये कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट का किसानों के हित में फैसला, धान समेत 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। श्री मोदी कल पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, रोड शो में भी शामिल होंगे। पटना में कोरोना के 6 और संक्रमित मिले, संक्रमितों में एम्स की महिला डॉक्टर और 2 नर्सें भी शामिल। और राज्य के विभिन्न भागों में प्री मानसून बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आज भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज और जमुई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।